आज है 1 अक्टूबर दिन शनिवार। स्वागत है आपका इंडिया बोल में, मैं हूं सुशीला सिंह। भारतीय सेना ने किया नियंत्रण रेखा के साथ लगे इलाकों पर सर्जिकल स्ट्राइक का दावा। पाकिस्तान ने कहा सीमा पार हुई गोलीबारी। कई देशों ने की संयम बरतने की अपील।
Secretary General urges the government of India and Pakistan to exercise maximum restraint.
लेकिन क्या इस तरह की कार्रवाई से लगेगी चरमपंथ पर लगाम? क्या 3 दशकों से चले आ रहे कश्मीरी चरमपंथ को मिल गया है जवाब? इसी मुद्दे पर होगी इंडिया बोल में बहस। बस सबसे थोड़ी सी देर में पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक के बाद इस दावे के बाद पहली बार इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की हालत सर्जरी के बाद बेसुध मरीज के जैसी है और उसे पता ही नहीं है कि क्या हुआ है। वहीं वामपंथी दल CPIM ने केंद्र सरकार से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने और सीमा पार चरमपंथ को खत्म करने के लिए राजनयिक और राजनीतिक कोशिशें जारी रखने की अपील की है। इस बीच समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल असीम सलीम बाजवा ने कहा है कि भारत प्रशासित कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक में भारतीय सेना को नुकसान हुआ है जिसे वो अब छुपा रही है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की राजदूत मलीहा लोधी ने सर्जिकल स्ट्राइक के दावे को झूठा बताया था। सीरिया के अलेप्पो शहर में आज सुबह से शुरू हुई बमबारी में एक अस्पताल को निशाना बनाया गया है जिस पर इसी हफ्ते पहले भी हमला किया गया था। रूसी और सीरियाई वायुसेना अलेप्पो के पूर्वी हिस्से पर हमला कर रही हैं जो विद्रोहियों के कब्जे में है। इस अस्पताल के एक चिकित्साकर्मी ने ये बताया। अलेप्पो में एक चिकित्साकर्मी ने कहा कि एक अस्पताल पर 2 बैरल बम गिराए गए हैं, एक अस्पताल के आगे और एक अस्पताल के पीछे गिराया गया है। अलेप्पो के एक चिकित्साकर्मी के शब्द। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि रूसी और सीरियाई सेना के हमलों में पिछले एक हफ्ते में बच्चों समेत करीब 400 नागरिकों की मौत हो चुकी है। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। चीन ने तिब्बत में अपनी एक पन बिजली परियोजना के लिए ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी का पानी रोक दिया है जिससे भारत और बांग्लादेश की चिंता बढ़ गई है क्योंकि इससे उनके इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों को पानी की आपूर्ति बाधित हो सकती है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार चीन ने कहा है कि वो इससे बिजली पैदा करेगा, पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए करेगा और साथ ही इससे बाढ़ पर काबू पाने में भी मदद मिलेगी। चीन से निकलकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश और असम से होती हुई बांग्लादेश तक जाती है। शिन्हुआ के मुताबिक चीन ने इस पन बिजली परियोजना पर वर्ष 2014 में काम शुरू किया था जिसे वर्ष 2019 तक पूरा करना है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 के तहत 64,275 लोगों ने अपने काले धन के बारे में सरकार को जानकारी दी है। आज दिल्ली में वित्त मंत्री ने कहा कि इन लोगों ने कुल 65,250 करोड़ रुपए के काले धन की जानकारी दी है। BBC समाचार।
नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस
आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, BBC इंडिया बोल।
29 सितंबर को भारत की सेना ने नियंत्रण रेखा के साथ लगे इलाकों पर सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया। पाकिस्तान ने किया इनकार, कहा सीमा पार से गोलीबारी हुई थी। इस घटना के बाद जहां दोनों देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के पास रह रहे लोग डरे हुए हैं, वहीं कई देशों ने दोनों देशों से संयम में रहने को कहा है। इधर आज भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। वहीं सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि भारत के सर्जिकल स्ट्राइक करने के दावे से 3 दशकों से चला आ रहा कश्मीरी चरमपंथ रुक जाएगा क्या? इस इसका यही जवाब है। क्या इससे चरमपंथी हमले रुक जाएंगे? क्या पाकिस्तान को अलग थलग कर पाएगा भारत? इन्हीं सब मुद्दों पर होगी इंडिया बोल में बहस। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर। मेरे साथ स्टूडियो में है मेजर जनरल अफसर करीम, इस्लामाबाद से बीबीसी संवाददाता हारून रशीद, श्रीनगर से बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर और भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे भारतीय राज्य पंजाब के खेमकरण इलाके से विनीत खरे। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। साथ ही हमारे साथ 1800 पर जो है श्रोता भी जुड़ चुके हैं। लेकिन पहले चलते हैं श्रीनगर बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर के पास और जानते हैं कि जो खबर आई है नियंत्रण रेखा के पास हुई गोलीबारी की, इस बारे में उनके पास क्या जानकारी है रियाज?
जी, यहाँ सैनिक अधिकारियों का कहना है कि पिछले 36 घंटों के दौरान 3 बार जो युद्ध विराम हुआ था उसका उल्लंघन हुआ है। 36 घंटों में 3 बार फायरिंग हुई है और आज भी सुबह 4 बजे से सैन्य अधिकारियों ने बताया कि 4 बजे ही पाकिस्तान रेंजर्स ने बीएसएफ इंस्टॉलेशंस पर फायरिंग की, क्योंकि बीएसएफ ही जो है वो अखनूर सेक्टर में बॉर्डर को गार्ड करती है। तो आज शाम तक ये फायरिंग रुक रुक के जारी थी, अभी जो है इसमें विराम आया है।
जी, अभी विराम आया है। रियाज मसरूर, आप लाइन पर बने रहिएगा, आपसे नियंत्रण रेखा से साथ लगे जो गांव है उनका हाल भी जानेंगे। लेकिन अभी चलते हैं इस्लामाबाद, जहां से बीबीसी संवाददाता हारून रशीद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हारून, इधर पाकिस्तान का भी आरोप है कि भीमर में भारत ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है, क्या जानकारी है आपके पास?
जी, पाकिस्तानी सेना के जो प्रवक्ता हैं मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा, उनका ये कहना था कि ये कल रात कोई 2 बजे दोबारा झड़प शुरू हुई थी और इसे जिस तरह माजी में भी पाकिस्तान कहता रहा है कि अनप्रोवोक फायरिंग थी इंडियन साइड से, तो ये सुबह 8 बजे तक जारी रही है। ताहम उन्होंने किसी हलाकत या किसी नुकसान की कोई खबर नहीं दी है और कहा है कि उसके बाद से पाकिस्तान की सेना ने किसी ताज़ा झड़प की कोई कन्फर्मेशन नहीं दी है।
जी हारून रशीद, आप हमारे साथ बने रहें। तो आज के ताज़ा घटनाक्रम में भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। सीधे चलते हैं अपने श्रोताओं के पास और देखते हैं हमारे साथ कौन जुड़े हुए।
हेलो
जी, अपना नाम बताएं।
मैम, मैं सुरेश कुमार बोल रहा हूँ।
सुरेश कुमार,
हाँ, हनुमानगढ़ जिला ग्राम पंचायत नड़ाऊ तहसील नोहर राजस्थान से बोल रहा हूँ।
जी, आप राजस्थान से बोल रहे हैं। आप
सबसे पहले तो बीबीसी के सभी श्रोताओं को और मेरे देशवासियों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश कुमार जी, पर हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप मुद्दे पर आए, समय बहुत कम होता है।
ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आता हूँ मुद्दे पर। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जो कदम उठाया वो बिल्कुल सही था। ये कदम तो मुंबई पे हमला हुआ था ना ताज होटल पे, तभी इसे उठा लेना चाहिए था, ताकि मतलब आतंकवाद के ऊपर पाकिस्तान की मत नहीं होती आज तक ऐसा काम करने की। ठीक है
जी जी।
और इसके अलावा मोदी जी का धन्यवाद है, अजीत डोभाल जी का भी धन्यवाद है, और सबसे बड़ा धन्यवाद तो इंडियन आर्मी का है जिन्होंने ये काम किया।
लेकिन इस तरह की, शेष कुमार जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह की कार्रवाई हुई है, जो भारतीय सेना दावा कर रही है कि उसने सर्जिकल स्ट्राइक की है, क्या आपको लगता है कि इससे चरमपंथ पर लगाम लग जाएगी, इससे अब हमले कम हो जाएंगे?
हाँ, हो गए, क्यों नहीं होंगे। अभी तो देखो हेडलाइन चल रही है कि 300 आतंकवादी मतलब जम्मू कश्मीर का क्षेत्र छोड़ के, पीओके का क्षेत्र छोड़ के भाग गए हैं। मैंने मतलब आज तक के ऊपर देखा था, वो दिखा रहे हैं, तो क्यों नहीं लगेगी लगाम। ठीक है, और पाकिस्तान ने तो डर के हमारे पीओके के अंदर इनके जो शायद आतंकवादियों के शिविर थे वो भी बंद कर दिए, यहाँ तक कि इन्होंने तो हाफिज सईद को भी चुप रहने तक की चेतावनी दी है। मैंने देखा है, आज मैं टीवी देख रहा था उससे।
जी, आप समाचार खबरों को देख रहे हैं, पर हम ये साफ कह दें कि बीबीसी इन सब बातों की पुष्टि नहीं करता है। ये जो हमारे श्रोता है सुरेश कुमार, ये अपनी जानकारी दे रहे हैं, ये इनका इनकी जो है टिप्पणी है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश कुमार जी इस बातचीत के लिए। आगे अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी, कौन बोल रहे हैं?
हेलो, नमस्कार
जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
जी, मैं ओम नमः शिवाय रेडियो श्रोता संघ मुकाम पोस्ट सगोरिया स्कूल घाटी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से बसंती लाल सूर्यवंशी बोल रहा हूँ। मैडम
जी, बसंत जी बताइए, आप पूरी बहस सुन रहे हैं। भारत कश्मीर, भारत प्रशासित कश्मीर के उड़ी में जब सेना कैंप पर हमला हुआ उसके बाद तनाव बढ़ गया था दोनों देशों में, अब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया है, क्या इससे चरमपंथ रुक जाएगा, कार्रवाई का क्या असर दिखता है आपको?
जी चरम पद रुक जाएगा। स्ट्राइक जो सेना ने अपने मोदी जी वगैरह ने सब सबने अच्छा सहयोग करा, तो इससे क्योंकि चरमपंथी रुकेगा सर, इससे मतलब और देश को भी सीख मिलेगा पाकिस्तान के अलावा, और चरमपंथी आतंकवादी खत्म होगा ना मैडम।
कैसे खत्म होगा, कैसे लगता है आपको ये?
जी जी, जैसे अपने देश भारत ने कदम उठाया तो मतलब हर जगह से मतलब ये कदम उठेगा तो बहुत अच्छा रहेगा ना, चरमपंथी बिल्कुल खत्म होगा, आतंकवादी तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए
जी, चरमपंथी नहीं होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बसंत जी अपनी बात रखने के लिए। आपको कार्यक्रम में शामिल करना चाहेंगे मेजर जनरल अफसर करीम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पहली बार भारत ने इसकी घोषणा की है कि उसने सर्जिकल स्ट्राइक की है पाकिस्तान में, जो नियंत्रण रेखा के साथ लगे इलाके हैं। दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच में भी बातचीत हुई, लेकिन इस सर्जिकल स्ट्राइक का असर क्या होगा?
देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक तो एक नाम है, ये एक ग्राउंड ऑपरेशन था छोटा, जो कि जहां फॉरवर्ड लॉन्चिंग पैड पे टेररिस्ट आते हैं उनको पाकिस्तानी आर्मी लाती है वहाँ पर, और वहाँ पर उनको बिठा देती है, और फिर जब उनको हुक्म मिलता है वो क्रॉस करते हैं। तो इंडियन आर्मी ने उन आदमियों को टारगेट किया ग्राउंड लेवल पे जाके, और उनकी कैजुअल्टी हुई, उनको पता नहीं लगा कि कौन आ रहा है, क्या हुआ
जी। तो ये क्या सर्जिकल स्ट्राइक पहली बार हुई है?
नहीं, लोकल लेवल पे एलओसी के क्रॉस होती रही झपटे, लेकिन ऑफिशियल लेवल पे इतने बड़े लेवल पे और गवर्नमेंट के अथॉरिटी से ये पहली दफ़ा हुआ
जी। आपसे आगे भी चर्चा में जारी रखेंगे, अभी देखते हैं हमारे साथ श्रोता कौन जुड़े हुए हैं। जी अपना नाम बताएं।
जी मेरा नाम सत्यदेव वर्मा है, मैं ग्राम भिनहुनी भिनगा श्रावस्ती उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ।
जी सत्यदेव जी बताइए, बहस जारी है अभी, आप क्या कहना चाहेंगे?
जी सर्जिकल स्ट्राइक से ये आतंकवाद का मुद्दा हल नहीं होगा, बेहतर ये होगा कि मुझे तो लगता है कि ये पाकिस्तान के संप्रभुता पर भी हमला है, और ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है इसको पाकिस्तान स्वयं करके आतंकवादियों को समाप्त करे तो ज्यादा बेहतर होगा, भारत के सेना को कुछ हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं।
आपका कहना है कि पाकिस्तान को चरमपंथियों के खिलाफ खुद कार्रवाई करनी चाहिए?
जी जी, वो अपने देश में जो भी चरमपंथी हैं जो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं उनकी समाप्ति वो पाकिस्तान स्वयं करे, भारत को की सेना को हस्तक्षेप न करना पड़े तो ये ज्यादा बेहतर होगा।
जी सत्यदेव जी अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेजर जनरल अफसर करीम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो सर्जिकल स्ट्राइक करने का दावा किया है भारत ने, क्या इसका क्या असर होगा पाकिस्तान पर?
देखिए, इमीडिएट इफेक्ट ये होगा कि कॉशन इम्पोज हो जाएगा उनके ऊपर, जो आके आराम से बैठते थे वो और अब क्रॉस करते थे वो इतना आसान नहीं होगा, उनको ये मालूम है कि हमारे ऊपर अटैक आ सकता है, इसलिए हर जगह से वो क्रॉस नहीं कर सकेंगे, और कुछ इलाकों में ज़रूर उनके ऊपर मुश्किल आ जाएगी क्रॉसिंग में और सामने आने में, तो इसका लोकल इफ़ेक्ट होगा फिलहाल, और उसका इम्पैक्ट असल में सिंबॉलिक है बहुत बड़ा, कि अब भारत जो है वो चुपचाप बैठ के ये मंजूर नहीं करेगा कि आप सीमा के पार बैठे और हमारे ऊपर हमला कर दें, सीमा के पार हम जाके आपके ऊपर हमला करेंगे, ये पहला है और बिल्कुल नज़दीक का है, अगर आपने कार्रवाई जारी रखी तो हो सकता है इससे बड़े हमले हो।
जी आपसे आगे भी जानेंगे कि पाकिस्तान को लेकर सेना की, जो भारतीय सेना की रणनीति है, क्या उसमें बदलाव आया है, आगे इस पर बातचीत करेंगे। हारून रशीद से को जोड़ना चाहेंगे और उनसे पूछते हैं कि हारून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के नेता हैं इमरान खान, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ, उनको पाकिस्तान का कमज़ोर पीएम बताया है, वहीं अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं सुजैन राइस ने साफ कहा कि अमेरिका ये उम्मीद करता है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के चिन्हित चरमपंथियों के खिलाफ प्रभावशाली कदम उठाए। क्या इसे एक तरह का पाकिस्तान पर दबाव देखते हैं, नवाज शरीफ पर एक तरह से पर दबाव देखते हैं?
देखें, दबाव तो नवाज शरीफ पर जो इमरान खान डाल रहे हैं वो इंडिया से ज़्यादा जो पानामा पेपर्स लीक हुए थे और जो उनके अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं उसकी वजह से काफ़ी बढ़ा रहे हैं, और जो उन्होंने अभी कल रात डेडलाइन दी है नवाज शरीफ को कि एक माह के अंदर अपने तमाम अकाउंट्स और डिटेल्स जो हैं वो आवाम के सामने रखें, वरना वो उसके बाद इस्लामाबाद बंद करने का एक मरतबा फिर ऐलान करेंगे और उस पर अमल करेंगे, तो वो एक अंदरूनी प्रेशर तो नवाज शरीफ पर यकीनन है, नवाज इमरान खान ने मुसलसल बनाए रखा हुआ है और वो उससे हटने को तैयार नहीं है। जब लेकिन बात आती है इंटरनेशनल अफेयर्स की या इंडिया के साथ रिलेशंस की, तो उसमें कल इमरान खान ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी कड़ी नुक्ताचीनी की और कहा कि वो समझते थे कि एक बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन उन्होंने ये करके काफ़ी अपना इमेज जो है वो ख़राब किया है। तो उस वजह से लगता ये है कि अगर जब बात आएगी किसी भी युद्ध की इंडिया के खिलाफ, तो लगता ये है, और कई पॉलिटिशियंस पार्टीज ने कहा है, पीपल्स पार्टी ने भी कहा है, बाकी ने भी कहा है कि जब बात होगी युद्ध की तो उस पर फिर कोई सियासत नहीं होगी। बिलावल भुट्टो ने भी ट्वीट किया था, इसी तरह की बात की थी, तो फिर उस पर पॉलिटिक्स नहीं होगी, फिर वो सब एक आवाज़ होंगे। और जहाँ तक अभी आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करेगा ये जो सर्जिकल स्ट्राइक थी, तो मेरा ख्याल में इंडिया ने टेस्ट किया है कि किस हद तक वो पाकिस्तान के साथ लिबर्टी ले सकता है इस तरह की कार्रवाई, क्योंकि काफ़ी अरसे से हो रही थी और शिकायत थी उसको, तो ये चेक किया है उसने। लेकिन चूंकि वो सर्जिकल स्ट्राइक थी या नहीं थी, बहस उसी में उलझ कर रह गई, तो पाकिस्तान के पास भी एक रास्ता निकलने का ये रह गया कि चूंकि ये पाकिस्तान के अंदर नहीं हुई लिहाजा वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो अगर आगे चल के इसी तरह होता है और ये इस तरह से ज्यादा सिलसिला बढ़ता है, तो फिर यकीनन इस खत्ते में जंग का एक खतरा जरूर मौजूद रहेगा।
जी, जंग का खतरा मौजूद रहेगा। हमारे साथ बने रहेगा हारून रशीद, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने बात भी की थी, रूस ने संयम बरतने को कहा है, वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव बान की मून ने भी दोनों सरकारों से संयम बरतने के लिए कहा। उनके प्रवक्ता का कहना था,
The Secretary General urges the government of India and Pakistan to exercise maximum restraint and address the outstanding issues peacefully.
महासचिव ने भारत और पाकिस्तान की सरकारों से आग्रह किया है कि वो अत्यधिक संयम बरतें और अनसुलझे मुद्दों को शांति से बातचीत के जरिए हल करें। वो तनाव कम करने के सभी प्रस्तावों का स्वागत करेंगे। निश्चित रूप से वो कथित उल्लंघनों की खबरों से वाकिफ हैं और संबंधित सरकारों से बात कर रहे हैं।
तो बान की मून भी बातचीत करने के लिए कह रहे हैं दोनों देशों के बीच। और वापस लौटेंगे आपके पास मेजर जनरल अफसर करीम, लेकिन हमारे सहयोगी विनीत खरे जो हैं वो पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे भारतीय पंजाब के खेमकरण इलाके में हैं और वो कुछ लोगों के साथ हैं जो उस इलाके में लोग जो रहते हैं उनके साथ हैं, और वो बहुत बेचैन है बीबीसी हिंदी से बात करने के लिए। विनीत, आपके पास आते हैं, ये बताइए कि किस तरह का माहौल है जहाँ पर आप हैं अभी।
सुशीला, इस वक्त हम खेमकरण से जो अमृतसर जाने वाला रास्ता है वहां पर हैं। सरकार ने कहा था कि जो 10 पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ करीब 10 किलोमीटर का इलाका है वहां से सब लोग सेफ्टी की तरफ जाएं, इवैक्यूएट करें इलाका, और पिछले 48 घंटों से ये रोड बिल्कुल भरी हुई है, लोग अपना साजो सामान लेकर निकल रहे हैं। आज भी दिन भर यहाँ पे गाड़ियां वापस बॉर्डर से दूर जाती रही। हमारे साथ दो लोग हैं, करण और गोल्डी, ये इन्होंने किराए का एक ट्रैक्टर हायर किया है, लेबरर्स हैं, और ये भी वापस यानी कहें कि जो खेमकरण का इलाका है वहां से दूर जा रहे हैं। सबसे पहले करण, आपसे किस तरह की परेशानी हुई और क्या चैलेंजेस आए जब आपको ये बताया कि वहां गुरुद्वारों से कहा जा रहा है, गुरुद्वारों से अनाउंसमेंट हो रही है कि लोग इवैक्यूएट करें?
हाँ, जहां पर ऐसा हुआ कि गांव में पहले अनाउंसमेंट की थी कि 24 आवर्स में जिवें भी हो सकता है कि बस अपना गाँव खाली कर दिया जाए, और जैसे ही हमें ये न्यूज मिली कि हाँ आप जो हो रहा है पाकिस्तान इंडिया का जो भी है, तो कुछ समझ नहीं लग रही की करिए की ना करिए, बट फिर भी कोशिश ये है कि हुण कुछ ना कुछ तो करना पैना। हुण ट्रैक्टर मिला, गाड़ी कोई मिली नहीं हैगी।
जी,
ट्रैक्टर मिला पर हुण समान लेके जा रहे हैं।
जी,
कोई टोटल
सारा समान है?
हाँ हाँ, टोटली सारा समान है अपने।
और आप जिस गाँव के हैं वहाँ का क्या हाल है, वहाँ पर बाकी के लोग?
वहाँ पर तो ठीक है, बट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंडीशन खराब है कि गाँव में कोई भी नहीं है यार, तो सभी गांव छोड़कर जा रहे हैं।
बीएसएफ का भी पैरा भी नहीं है, पुलिस लगी हुई है, कोई बात तो है नहीं, वैसे ही खजल खराब वाली बात है।
नहीं, तो जब आप कहते हैं बात नहीं है, इसका क्या मतलब है आपका?
बात यही है कि कोई बात तो है नहीं, बोल रहे हैं झगड़ा है, जंग लगेगी जो कहाँ पे जाएंगे हम।
जी, तो बाकी के आपके परिवार वाले कहाँ है? मैं देख रहा हूँ ट्रैक्टर में अलमारियां हैं, काफी कुछ साजो सामान है आप लेकर जा रहे हैं अमृतसर की तरफ, बाकी के जो परिवार वाले हैं वो कहाँ हैं?
बाकी का परिवार रिश्तेदार के पास है।
बाकी के परिवार रिश्तेदार, और बाकी के गांव वाले उनका क्या हाल है करण?
उनका तो हम बता नहीं सकते, बट जैसे हमें दिक्कत आ रही है जहाँ पर, सभी ऐसी दिक्कत से गुजरे होंगे।
जी,
इसलिए हम तो जा रहे हैं अपनी नानी के पास जा रहे हैं, उनका पता नहीं क्या होगा क्या नहीं।
जी सुशीला, यहाँ बता दें बहुत सारे लोग हैं वो अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि वहाँ पर कितने दिन तक रहेंगे और ये हालत कब तक रहेगी।
जी जी, जो पंजाब की सीमा से लगे हुए इलाके हैं, पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के, भारतीय जो राज्य पंजाब है उसकी सीमा से लगे इलाकों में जो लोग रह रहे हैं वो पलायन कर रहे हैं डर के मारे और काफ़ी असमंजस की स्थिति में है। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत खरे इस जानकारी के लिए। और अब चलते हैं श्रीनगर रियाज मसरूर के पास और वहाँ से जानते हैं कि नियंत्रण रेखा के नज़दीक जो लोग रह रहे हैं वो उनका क्या कहना है। जी रियाज।
जी ज़्यादातर तनाव तो जम्मू क्षेत्र में, जो खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री है जिसको पाकिस्तान वर्किंग बाउंड्री कहता है, उसके साथ लगे जो सेक्टर्स हैं, आरएसपोरा है, बिश्ना है, छम है, झोड़ियां है और दूसरे सेक्टर्स हैं, उसमें पहले ही पलायन हो चुका है और हमें प्रशासन ने बताया कि 26,000 लोग जो हैं वो वहां से निकाले गए हैं और उनको, कुछ को तो राहत शिविरों में रखा गया है क्योंकि स्कूल बंद है और स्कूल की इमारतों को राहत शिविरों में कन्वर्ट किया गया है और कुछ लोग रिश्तेदारों के पास गए हैं। और आज तक तो अभी कश्मीर घाटी में पलायन नहीं हुआ था, लेकिन आज हमने सुना कि करना और टंगडार सेक्टरों में जो है वहां से कोई 100 फैमिलीज निकली हैं, करीब 600 लोग जो है वो पलायन कर चुके हैं सेफ्टी की तरफ। और इसके अलावा आज काफी मतलब गतिविधियां देखी गई सैन्य अधिकारियों में, क्योंकि आर्मी चीफ, पहली बार जब से सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया गया है तब से पहली बार आर्मी चीफ ने जम्मू का दौरा किया और जम्मू कश्मीर में जो नियंत्रण रेखा है उसकी अगली चौकियों का मुआयना किया। उनके साथ 14, 15 और 16 आर्मी कोर जो है उसके कमांडर्स भी थे और खासतौर से नॉर्दर्न कमांड के कमांडर भी उनके साथ थे और पूरा दिन भर जो है एक स्ट्रेटेजिक मीटिंग्स होती रही, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन को एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उस रिएक्शन को किस तरह से टैकल किया जाए उस पर बातें होती रही।
जी, तो भारत प्रशासित कश्मीर पर नियंत्रण रेखा के पास से जो लगे गाँव है वहां पर से भी लोग पलायन कर रहे हैं। रियाज मसरूर, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम हारून रशीद को जोड़ना चाहेंगे जो इस्लामाबाद में मौजूद है, बीबीसी संवाददाता। हारून साहब, आप ये बताइए कि वहां पर किस तरह के हालात हैं जो एलओसी के पास लोग रह रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास लगे जो गांव हैं उनके पास रह रहे हैं।
जी, यहाँ पे भी इतलात यही मिल रही है कि लोग खुद ही सेफ्टी की वजह से वहां से निकल रहे हैं और महफूज मकामात की तरफ जा रहे हैं। एलओसी में भी यही सूरत हाल है और जिस तरह रियाज मसूद बता रहे थे, जो पाकिस्तानी साइड है, वर्किंग बाउंड्री जिसे पाकिस्तान कहता है, उसकी तरफ भी शकरगढ़ और नारोवाल और इस तरफ के इलाकों में भी लोग जो है अपने घर बार छोड़कर रजाकाराना तौर पर निकल रहे हैं वहाँ से। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ दिन में लोग वापस चले जाते हैं लेकिन रात को वो इलाका खाली कर देते हैं और उनको खतरा यही है कि किसी भी वक्त अगर कोई सूरत हाल बनती है तो वो रात को ये खतरा नहीं मोल ले सकते, दिन में आकर अपने खेत में काम वाम कर लेते हैं लेकिन रातों को वो वापस जा रहे हैं। तो ये सिलसिला इस पूरे खत्ते में, इस तरफ पाकिस्तान की साइड पर भी तकरीबन यही सूरत हाल बनी।
जी, वही सूरत हाल है जो भारत प्रशासित नियंत्रण रेखा के पास दिखाई दे रही है। आप हमारे साथ बने रहिएगा हारून रशीद साहब, देखते हैं हमारे साथ कौन श्रोता जुड़े हुए हैं। जी, अपना नाम बताएं।
नमस्कार जी, मैं श्रीकांत बोल रहा हूँ बैंगलोर से।
जी श्रीकांत, आप पूरी बहस सुन रहे हैं, आपने देखा कि किस तरह से लोग पलायन कर रहे हैं, जी क्या कहना चाहेंगे?
मैं ये कहना चाहता हूँ कि संसद पे जब हमला हुआ था उसके बाद ऑपरेशन पराक्रम हुआ था तो पाकिस्तान को सीज फायर के लिए कोशिश करनी पड़ी थी और अगर इसी तरह हम लोग दोबारा भी करते रहेंगे तो इसमें कोई खास बात नहीं है, ये तो प्रकृति का नियम है, न्यूटन का लॉ है, एक्शन रिएक्शन, इसमें बड़ी कोई बात नहीं है। मुझे तो ताज्जुब इस बात का हो रहा है, हम लोग 20-20 से भी विश्वास करते हैं, 60 घंटे हो गए अभी तक यस या नो का नहीं पता चल रहा है, आप दावा कहते हैं, कृपया बताइए आपकी तरफ से हमला हुआ है कि नहीं हुआ है।
जी, आपने आपने हारून रशीद की तो बात सुनी ही श्रीकांत की, अभी पाकिस्तान भी कुछ नहीं कह रहा है इस बारे में और भारत भी पूरी जानकारी इस पे बारे में नहीं दे रहा है। मेजर जनरल अफसर करीम, आपको जोड़ना चाहेंगे इस फिलहाल। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की हालत उस मरीज के जैसी है जिसका ऑपरेशन किया गया हो, सर्जिकल स्ट्राइक के 2 दिन बाद भी उन्हें नहीं पता कि क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत शांति चाहता है और बिना उकसावे के आक्रामकता नहीं दिखाएगा लेकिन चरमपंथ पर भी चुप नहीं रहेगा। तो आपसे यहां ही जानना चाहेंगे, ये मनोहर पर्रिकर के शब्द हम बता रहे थे, उन्होंने ये कहा है कि क्या भारत जो है उसका स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट जो बर्दाश्त करने की बोले जाती है कि रणनीति रही है वो क्या बदली है?
नहीं, इस तरह बदली है कि जब हमारे ऊपर अगर टेररिस्ट अटैक आएंगे दोबारा या उनकी पता लगेगा कि लोग जमा हो रहे हैं तो भारत चुप नहीं बैठेगा। और ये एक ज़रूरी बात है क्योंकि हमारे ऊपर वो अटैक अंदर आके करते हैं और फिर तरबियर हो जाते हैं, उनके ऊपर अटैक करना हमारा मुश्किल हो जाता है। जब वो एक जगह बैठे हैं और अपने इलाके में बैठे हैं तो हमें ज़रूर उनके ऊपर अटैक करने की ज़रूरत है। तो ये स्थिति चेंज हुई है, ये स्ट्रैटेजी तो टैक्टिकल लेवल पर चेंज हुई है।
जी हारून रशीद साहब, आपको जोड़ना चाहेंगे अभी, ये जो पूरी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है इस पर मीडिया का और लोगों का क्या कहना है वहाँ पर?
देखिए मीडिया का तो मैं अभी बताता हूँ, लेकिन आज जो पाकिस्तानी सेना थी वो कुछ पत्रकारों को एलओसी की जानिब ले गई थी और वहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल हासिम सलीम बाजवा ने ब्रीफिंग भी दी और उसमें उन्होंने एक नई बात की। ये जो भारत की तरफ से दावा है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भी उसका जवाब दिया था और उनके ख्याल में पाकिस्तान भारत की साइड पर भारत को नुकसान भी हुआ है और लेकिन भारत उसको नहीं बता रहा। तो ये भारत में ये सवाल पूछना चाहिए कि वो अपना नुकसान क्यों छुपा रहे हैं। तो ये नई बात उन्होंने की है कि ये झड़प, इससे तो यही लगता है कि कोई ठीक ठाक झड़प हुई थी लेकिन उसमें नुकसान किसका कितना हुआ और कौन किस इलाके में था ये अभी भी डाउटफुल है। जहां तक मीडिया और उसकी बात है तो पाकिस्तानी मीडिया तो वही नेशनलिस्टिक स्टांस लिया हुआ है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसके सबूत कहाँ हैं, जो लॉन्च पैड भारत कहता है कि पाकिस्तान के इलाके में उन्होंने तबाह किए हैं उनकी कोई डिटेल्स हैं या नहीं हैं। तो ज़्यादा नैरेटिव यहाँ यही बिल्ड किया जा रहा है कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक थी ये असल में जो पाकिस्तानी सेना कह रही है या सरकार कह रही है वो सही कह रही है, ये कोई इसका वजूद नहीं था।
जी तो मीडिया भी जो सरकार कह रही है वही कह रही है। हारून साहब आप हमारे साथ बने रहिएगा, देखते हैं हमारे साथ कौन श्रोता जुड़े हुए हैं। जी अपना नाम बताएं।
हाँ सर मैं, नमस्ते मैडम, मैं एनटीपीसी भरूच गुजरात से योगेश भोटे जी बोल रहा हूँ।
जी योगेश जी अपनी बात जल्द से रखें क्योंकि बहुत कम समय है हमारे पास।
हाँ हाँ मेरा ये कहना है कि अगर ये हमला हुआ है ये सही है परंतु एलओसी से अगर इस तरीके से हमले हम करते रहेंगे तो संघर्ष बढ़ता ही रहेगा दोनों भी साइड से। इसकी अपेक्षा इस समस्या को हमें राजनीतिक रूप से सुलझाना पड़ेगा ताकि और विशेषकर जनमत संग्रह करके कश्मीर इस समस्या को सुलझाए बिना ये आतंकवाद और ये असंतोष ये उग्रवाद खत्म नहीं होगा, ये हमारी राय।
जी योगेश जी अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेजर जनरल अफसर करीम आपसे पूछना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने केरल के कोझिकोड में कहा था कि पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा, इस्लामाबाद में होने वाले जो सार्क सम्मेलन था वो स्थगित हो गया है, अफगानिस्तान भूटान बांग्लादेश और श्रीलंका ने कहा है कि उसमें हिस्सा नहीं लेंगे, अमरीका की राय आप सुन ही चुके हैं जानते ही हैं और बान की मून ने भी दोनों देशों से संयम बरतने को कहा है, लेकिन क्या लग रहा है कि पाकिस्तान अलग थलग पड़ता दिखाई दे रहा है?
नहीं ये ज़रूर लग रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है कि वो कुछ कार्रवाई ऐसी बंद करे जिसकी वजह से टेंशन बढ़ता है और लड़ाई का ख़तरा पैदा होता है। लेकिन ये कहना कि वो अलग थलग हो गया सही नहीं होगा क्योंकि इसका कोई ख़ास निशान अभी जाहिर नहीं उनके ऊपर।
जी हारून साहब आपसे पूछना चाहेंगे, ये आखिरी टिप्पणी है बहुत कम समय है, कि क्या जिस तरह से इस्लामाबाद में होना था सार्क सम्मेलन वो अभी स्थगित हुआ है, दिख रहा है कि क्या ऐसा लग वहाँ पर क्या चर्चाएं हैं कि क्या आइसोलेट होता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान इस्लामाबाद?
देखिए मैं ये सारी बहस पाकिस्तानी मीडिया पर भी और अखबारों में भी देखता रहा, कहीं भी ये सवाल नहीं उठाया गया कि क्या पाकिस्तान आइसोलेट हुआ है। सिर्फ ये कहा गया, इसको ट्विस्ट यहाँ पर स्पिन ये दी गई कि भारत की वजह से सार्क समिट नहीं हुआ और अमन तलाश करने का एक मौका गंवाया गया है। तो यहाँ तो नैरेटिव उस तरह का बिल्ड किया जा रहा है, लेकिन यकीनन पाकिस्तान को एक धचका ज़रूर लगा है अफगानिस्तान बांग्लादेश जैसे मुल्क से कि उन्होंने जो इससे पुल आउट किया है, तो उससे पॉलिटिकली इस वक्त तो उनको नुकसान ज़रूर हुआ है, लेकिन वो कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये एक मौका था, इस तरह के और मौके भी आएंगे और सूरत हाल फिर उसके हिसाब से डिवाइस की जाएगी, जो भी जिस देश ने जिस तरह किया तो उसके साथ फिर उस तरह देखा जाएगा।
जी देखा जाएगा उस तरह से जिस तरह से जिस देश ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद इस्लामाबाद से हारून रशीद, श्रीनगर से रियाज मसरूर, पंजाब से विनीत खरे और मेजर जनरल अफसर करीम आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इंडिया बोल में बस इतना ही और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पास सर्जिकल स्ट्राइक के दावे के बाद पहली बार इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हालत सर्जरी के बाद बेसुध मरीज के जैसी है और उसे पता ही नहीं है कि क्या हुआ है। वहीं पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल असीम सलीम बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक में भारतीय सेना को नुकसान हुआ है जिसे वो छुपा रही है। चीन ने तिब्बत में अपनी एक पन बिजली परियोजना के लिए ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी का पानी रोक दिया है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी हरिता कांडपाल। इसी के साथ इंडिया बोल में बस इतना ही। तकनीकी सहयोगी अजीत सारथी के साथ 9:30 बजे फिर होगी मुलाकात घटना चक्र में। तब तक दीजिए इजाजत।